आवाज़ है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन चलाता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हैरल किल हैं और हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं जिन्होंने कहानी लिखी है। तो लीजिए हम आपको इससे पहले कि कहानी सुनाएं ये बता दें कि ये प्रोग्राम आप बराह रास्त फेसबुक पर देख सकते हैं, फेसबुक पर अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एक वीडियो देखा जो एक कहानी से बराह रास्त तो मुतालिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कहानी एक ऐसे साहब की है जो कि किसान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो हैं श्री भगवान शर्मा साहब, जो कि इन्होंने एक हमें कहानी बहुत प्यारी भेजी है और इनका ताल्लुक़ एक किसान घराने से है। इन्होंने पढ़ा लिखा आगे बढ़े, ना सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि अपने 3 भाइयों को इंजीनियरिंग इन समेत तालीम दिलाई। तो ये कहानी सुनते हैं, इनसे कुछ बात भी होगी किसानों की सूरत हाल पर, पाकिस्तान में हो या इंडिया में या बांग्लादेश में, गरीब आदमी की और किसान की सूरत हाल एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो चलिए पहले हम कहानी की तरफ चलते हैं और उसके बाद मज़ीद बातें होंगी। कहानी है श्री भगवान शर्मा साहब की।
मैं SB शर्मा, श्री भगवान शर्मा, जमशेदपुर झारखंड भारत से बोल रहा हूँ, और मेरी कहानी में आज हम अपने ऊपर बीती एक सच्ची कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका का धन्यवाद जो मेरी कहानी सुनने के लिए और श्रोताओं को तक पहुँचाने के लिए एक हमें मौका दिया है। तो शेर शाह जहाँ उनका राजधानी सासाराम बोला जाता है उस जगह को, उसी जिला के गांव में एक पूरी ग्रामीण परिवेश में पैदा हुए, और हमारे पिताजी किसान थे, मेरा दादा भी किसान थे। हम लोगों का दूर दूर तक कोई नौकरी में और पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। हालांकि स्कूल गए थे, मेरे दादाजी भी गए थे, पिताजी भी स्कूल गए थे, और जैसा लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी कि वो लोग क्वालिफिकेशन ले सकें। मेरा जन्म हुआ था 69 में, फरवरी 69 में। अपने परिवार के हम बड़े बेटे थे, बहुत प्यार दुलार मिला। कमी एक चीज की थी कि हमारे घर में पैसे की कमी थी। 1986 में जो मैट्रिकुलेशन है उसका एग्जाम पास किए और फर्स्ट डिवीजन से पास किए, अपने इलाका में बड़ा नाम हुआ, और हमको गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जा करके पढ़ाई करना पड़ता था, तो उतना दूर जाते थे और पढ़ के आते थे घर में, फिर रात को पढ़ाई करते थे, तो कुछ इधर उधर भी गांव के बच्चों को पढ़ाते थे ताकि कुछ अर्निंग हो जाए। खेती का जमीन बहुत कम था, थोड़ा था, और पैदावार भी अच्छा नहीं था, इसलिए उतना इनकम नहीं हो पाता था। मेरे अलावा और 2 भाई और 2 बहन थे। अल्टीमेटली फिर हमारा जो हेडक्वार्टर था सासाराम, वहाँ इंटर किए। इंटर करने के बाद हम BSc मैथ से कर रहे थे। उसी साल 89 में इंजीनियरिंग का परीक्षा जो है दिए, और पढ़ने में तेज थे ही, और हमारा सिलेक्शन इंजीनियरिंग में हो गया। 1992 का बात है जब हम इंजीनियरिंग पास किए और एक्सटेंशन से पास, और पास करने के बाद ही 4-5 महीने के अंदर नौकरी हो गया। हमारा इनकम करीब जब हम ज्वाइन किए थे तो 2050, 7 से 25 साल पहले की बात है, 2050 रुपया हमारा बेसिक था। 7000 के आसपास हमारा सैलरी मिलता था। भाई बहन भी पढ़ रहे थे, तो एक भाई जो हमसे छोटा था उसको भी इंजीनियरिंग हमने कराया। वो आज के समय में सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में है, और एक और भाई है उसको भी पढ़ाए, वो भी जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। पढ़ने के बाद 3 इंजीनियर हमारे घर में बने, और 2 बहन थी तो वो लोग तो पढ़ी लेकिन नौकरी नहीं कर पाई, गांव में ही वो लोग रह गई। तो बेसिक एजुकेशन जो है, बेसिक ईमानदारी का, तो रामायण वगैरह का पाठ जो है मेरे पिताजी गाँव गाँव में सुनाते थे, गाँव में लोग आते थे सुनने के लिए। तो इथिकल वैल्यू हमारे ब्लड में था, जो ईमानदारी है, सच्चाई है, कैसे अपने आप को रखना है, ये हमारे घर में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये चीज नस नस में घुसा हुआ कि गरीबी में भी हमको फाइट करना है, पीछे नहीं हटना है। ऐसा नहीं कि गरीबी आ गया तो हम, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गया तो हम पीछे हट जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, अपने बात को रखेंगे नहीं, और वो ही आकर के जब उसने हमको काम दिया और मेरा साथ दिया। जब हम इंटर कर रहे थे उसी समय मेरी शादी ठीक होगी। मेरे फादर इन लॉ स्कूल के टीचर थे और संजोग की बात है कि जब हम पास किए तब नौकरी हुई और 3 साल बाद मिसेज से मुलाकात हुई, मैंने जिसको हम लोग गवना दुरागमन बोलते हैं, यानी हमारे भाषा में बोला जाए तो उसको दुरागमन बोलते हैं। 2012 का बात है जब मैं नौकरी का 20 साल गुजार चुका था और इस एक कंपनी है जिस कंपनी में हम सुपरवाइजर के पद पर थे और फाइनेंशियल लेन देन मेरे स्तर पर होता था। मेरे सुपीरियर एक आदमी का ट्रांसफर हुआ जो हमको जिसको रिपोर्ट करना था, वो चाहते थे कि हम कुछ गड़बड़ी करें और उनके अनुसार से बिलिंग और मैनेजमेंट का जो भी रिपोर्ट है तैयार करें ताकि उनको फायदा हो, उनके लोगों को फायदा हो। हम ऐसा करने से साफ मना कर दिए, जो तो हमने साफ कह दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो माने नहीं और मुझ पर तरह तरह के दबाव बनाने की कोशिश किए। हम अपने बात को ऊपर तक पहुँचाए लेकिन कुछ कोई भी मेरे बात को सुनने के नहीं तैयार हुआ। तो इसके बाद जो हमारा सुपीरियर था जो हमको ऐसा करने के लिए इलीगल करने के लिए दबाव देता था, वो हमारे ऊपर एक रिटेन ब्लेम फाइल किया मैनेजमेंट के ऊपर कि फलाना व्यक्ति जो है रुपए का गमन किया है अपने लेन देन में। तो मैनेजमेंट ने एक इंक्वायरी टीम फॉर्म की। इंक्वायरी टीम फॉर्म करने का मतलब ये होता है कि आपको सस्पेक्ट मान लिया गया, ये आपके दामन पर आपके करेक्टरिस्टिक पर एक तरह का दाग होता है और ये दाग हमारे ऊपर लगाया गया। हम अपने से जो भी हमारे जान पहचान के अच्छे ओहदे पर लोग काम करते थे सबके पास गए, सबको अपनी व्यथा सुनाए, लेकिन कोई फ्रंट लाइन पर आकर के मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने से बहुत ऊंचे ऊंचे पद के लोगों से जान पहचान है चुकी मेरी, क्योंकि ईमानदार छवि थी, इसके चलते हम उन लोग उनके पास भी गए। तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि जो हमारे ग्रुप का हेड है, चीफ है, उसके पास आप जाइए। हम वहाँ गए क्योंकि जो मेरा सुपीरियर है जैसा फीडबैक दिया था उसके अनुसार से वो हमारे बात को ना सुनकर हमारे ऊपर बरस गए और तुम ऐसा किया है वैसा किया है, तुम रुपए का गमन किया है, मेरा कुछ भी बात नहीं सुने। इसके अलावा ऑफिसर के अधिकारियों के पास हम गए, अपना व्यथा को सुनाए, अपने बातचीत को सुनाए। हम चीखते रहे चिल्लाते रहे लोगों के पास अपनी दर्द भरी कहानी। हम मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे उस पीरियड में, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब सस्पेक्ट के नजरिया से हमको देख रहे थे कि यही वो आदमी है। लेकिन संजोग की बात यह है कि जो टीम फॉर्म हुआ था, एक उसमें थर्ड पार्टी जो दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी था उसको उसमें डाला गया था जो इंक्वायरी का टेक्निकल सपोर्ट करता था। जब जब इंक्वायरी की मीटिंग होती थी वो व्यक्ति बहुत कम आते थे उस मीटिंग में। करीब करीब ये इंक्वायरी जो है साल भर चला और उस पीरियड में हम काफी मेंटली परेशान थे, परिवार के लोग परेशान थे, कोई सहायता नहीं मिल रहा था। मेरा बीबी का, मेरा मिसेज का बहुत सपोर्ट था क्योंकि हम लोग तो हमारे दूर दूर तक हमारे पिताजी का परिवार में कोई ऐसा ग्रेजुएट या फिर मैट्रिकुलेट भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन इनके परिवार में और भी काफी पढ़े लिखे लोग थे, काफी नौकरी में लोग थे। मेरी मिसेज भी ग्रेजुएट हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे व्यक्ति में जो हमको नजर आता है कि जो स्वाभिमान है, जो आत्मविश्वास है, वो बहुत ज्यादा होती है कि आप अपने बात को कैसे लोगों के सामने रख सकते। अनपढ़ व्यक्ति में ही कमी होता है कि वो चीज रख नहीं पाता, तो ये मेरे पत्नी में बहुत अच्छा से चीज। जब ये प्रॉब्लम मेरे सामने, जो समस्या मेरे सामने आया, तो इस समय मेरी वाइफ का बहुत हाथ था। उन्होंने हर समय सपोर्ट किया कि किस तरह से आपको अपने बात को रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है और कैसे हताश नहीं होना है। यदि आपके बात को कोई सुन नहीं रहा है तो आप हताश मत होइए। ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहा है तो आपका सुनने वाला कोई नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपकी बात को सुनेगा। यदि ईमानदारी है, सच्चाई है, तो बात को सुना जाएगा और आपकी विजय होगी। और उसी रास्ते पर हम चलते रहे, उसी का परिणाम हुआ कि हम अंतोगत्वा करीब 13 महीना इंक्वायरी चलने के बाद जब रिजल्ट आया तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि ये रिजल्ट इस तरह का होगा, चौंकाने वाला होगा और हमारे फेवर में होगा। रिजल्ट आया जिसका परिणाम ये था, 2-3 लाइन में यदि हम बताएं तो पहला परिणाम ये था कि जो लिखा गया पहला लाइन ये था कि ये इंक्वायरी में जो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये दोषारोपण किया गया है, इस तरह का कोई आरोप का प्रमाण नहीं मिला। दूसरा लाइन ये लिखा गया कि ये इंटेंशनली ऐसा किया गया, अतः उस अधिकारी को इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ये रिकमेंडेशन हम करते हैं कि उस अधिकारी को यथा शीघ्र है ऑर्गेनाइजेशन से हटाया जाए, नहीं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को गंदा करेगा। उसमें तीसरा लाइन ये था कि जो उस टीम का लोग हैं, जो उस ऊपर का जो ऑफिसर था उसको प्रेरित कर रहे थे कि ऐसा कीजिए, आप दबाव बनाइए, ये जो व्यक्ति है ऐसे लोगों के बीच घिरा हुआ है, ऐसे लोगों इसके दोस्त हैं जो गलत करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं। रिजल्ट पब्लिश हुआ और जब हमारे डिपार्टमेंटल हेड के उसी हेड के पास गया जिसके पास हम गए थे शुरू में न्याय मांगने के लिए और वो हमारा बात नहीं सुना, उसी हेड के पास से तो रिपोर्ट जाने के बाद वो आदमी हमको बुलाया, अपने चेयर से खुद उठ करके हमको शाबाशी दिए कि आप, लेकिन आज प्रूफ हो गया है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। और दूसरी चीज हुई कि जो व्यक्ति सारे मामला को तैयार किया था वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया, और उसमें ये भी लिखा गया ट्रांसफर के साथ साथ उसको ये बोला गया कि अब यथाशीघ्र आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए, आपके ऊपर ये केस बन रहा है, आप जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है, नहीं तो हम लोग जबरन आपको हटा देंगे। और खुशी की बात यह है कि वो व्यक्ति 3 से 4 महीने के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्सली रिटायरमेंट, वो फोर्सली रिटायरमेंट ले लिया और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया। यदि अंत में हमको कहना जाए तो हम ये कहेंगे कि सत्य की विजय हुई, हमारे ऊपर बहुत तकलीफ दुख आया लेकिन हम अकेले झेलते रहे, अपनी लड़ाई आपको अपने लड़नी पड़ेगी, आपको साथ देने वाला कोई नहीं है, और उसमें डरना नहीं है, डरना नहीं है, पूरे कहानी में हमने डरा नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़े और अंत में विजय हुआ। धन्यवाद।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
मजीद तफसीलात के लिए urdu.voa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो समीन, पता आपने नोट कर लिया होगा, भारत में हमारे सुनने वाले हमसे पता पूछते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप फेसबुक पर भी हमें भेज सकते हैं कहानी, इसके अलावा ईमेल के ज़रिए आप हमें भेज सकते हैं, और ईमेल बहुत आसान है urdu.feedback@voanews.com, या आप चाहें तो मेरे नाम से भेज सकते हैं sazeez@voanews.com, और जो भी चाहें वो फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ या वीडियो डालना चाहें या तस्वीरें डालना चाहें, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से फेसबुक पर हमें भेज सकते हैं। और बदकिस्मती से अब पीओ बॉक्स जो है पाकिस्तान से हमें ज़्यादा आसानी से मौसूल हो जाती हैं चीज़ें, तो अगर कोई और एड्रेस हो हम आपको ज़रूर बताएँगे कश्मीर के लिए और दूसरे इलाकों के लिए। तो मैं कुछ नाम पढ़ना चाहती हूँ इससे पहले कि हम बाकी कुछ बातें भी करें, हमारे जो आज के पहले कहानीकार थे यानी श्री भगवान शर्मा साहब, ये फेसबुक पे जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोग्राम डायरेक्ट आ रहा है, उमैर इमरान, शम्स खान मीरानी, अकबर अकरम दावर, इन्होंने रबते का नंबर पूछा है, तो ये टोल फ्री नंबर है 0800-777-789, तो आप इसे फ़ोन कर सकते हैं, आप में से जो भी चाहें। अंजुम जो हैं बड़ी मुस्तादी से ना सिर्फ फ़ोन लेते हैं बल्कि अगर आप में से किसी का सेल फ़ोन हो या यानी मोबाइल, तो आप वो नंबर उनको दे दें, वो आपको खुद से कॉल कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल पर ये नंबर फ्री नहीं होता, आपके पैसे लगेंगे। पश्तीन ये भी इन्होंने मैसेज किया है, डॉक्टर ताज अफरीदान, मोहम्मद इकबाल चौहान, तौसीफ शौकी, मोहम्मद इलियास खान, इंजीनियर राहतुल्ला, सुलेमान दुईयाब, शाहिद खान, साजिद आफरीदी, चौधरी उमर, सैयद वसीम सज्जाद, मुकेश सिंधी, सैयदुल खान, उमर गुल, मोहम्मद इमरान, शाहिद जाहिद, अली खिलजी, असदुल्ला खान, सैयद ज़ादा और अरमान खान महसूस साहिबान, इन सब ने मैसेजेस किए हैं और भी जो होंगे मैं पढ़ती जाऊंगी। जो सवाल आपने पूछे हैं वो मैं थोड़ी देर में जब हमारे साथ होंगे, कहानी खत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, تو ہم خود شری بھگوان شرما صاحب سے سوالات پوچھیں گے. تو چلیے تھوڑی سی ان سے پہلے باتیں سنتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو ایک ڈالا ہوا ہے ہم نے, اس میں ایک تصویر ہے جو جے پور راجستھان کا جو ایک شہر ہے اس کے کسانوں نے ایک احتجاج کیا تھا پچھلے سال, اور اس میں انہوں نے زمین میں گڑھے کھود کر خود کو گردن تک دفن کر دیا تھا, اور ایک آدھ دن نہیں کئی دن تک احتجاج جاری رہا تھا. یہ کسان اپنی زمینیں چھن جانے پر احتجاج کر رہے تھے. تو ایسی خبریں آئے دن ہم پڑھتے ہیں اخبارات میں, پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی, کہ غربت سے تنگ آ کر, بھوک سے تنگ آ کر, مفلسی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی, اور کسانوں کی خودکشیاں بڑی عام سی بات ہو گئی تھیں. تو کیونکہ ہمارے شرما جی کا تعلق بھی کسان گھرانے سے ہے تو یہ بات بھی ان سے ہوگی. لیجیے ان سے بات چیت سنتے ہیں. تو اب آپ کس عہدے پہ پہنچے ہیں؟
میں ابھی اسی عہدے پر پہنچ گیا ہے جس عہدے پر جو ویکتی نے ہمارے اوپر بلیم لگایا تھا. ہم ابھی ادھیکاری ہیں, اپنے وبھاگ کا ہیڈ ہے. پہلا ہمارے اوپر کا جو ویکتی دیکھ رہا تھا وہ سارا چیز ہم دیکھ رہے ہیں, فائنینشیل سے لے کر سپرویژن, مٹیریل مینجمنٹ, سارا چیز. میں نے ڈپارٹمنٹ کے چلانے کے لیے جو جو چیز ضروری ہے وہ سب میں ابھی خود کرتا ہوں. کافی بڑھیا سے دھیان میں رکھتے ہیں کہ اس ویکتی کو, جو ہمارے اندر جتنے بھی ویکتی ہیں اس کے اوپر کسی طرح کا متھیا آروپ تو چھوڑیے, اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے غلط کیا. ہمارے ساتھی ہے, اس کام کر رہا ہے, اس سے کچھ غلطی بھی ہو گئی تو ہمارا یہ دائتو ہے کہ اسے ہم سمجھائیں کہ یہ چیز تم سے غلطی ہو رہی ہے, اس کو دور کرو.
جب اوپر کوئی آدمی ایسا آ کے بیٹھ جاتا ہے نا جو ایماندار, خود ایماندار ہوتا ہے, تو پوری چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ دوسرے کی پھر بے ایمانی کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے.
بالکل اپنے بےمانوں کا بازار ہو جاتا ہے کھڑا.
یہ صحیح بات ہے
جی, بےمانوں کا میلہ کھڑا ہو جاتا ہے. سب چونکہ ایک جیسے ہوتا ہے, ایک کام کرنے والے لوگ ہیں, سب ایک دوسرے کے, وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے وہ میرا ساتھ دے گا, وہ تو کر ہی رہا ہے, کہ ہمارے اوپر کیوں انگلی اٹھائے گا.
میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت یہ بیچ میں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کسانوں میں بہت خودکشی کرنے کا شروع ہوا ایک سلسلہ نا, کیونکہ مایوسی کی وجہ سے فصلیں نہیں ہو رہی تھیں, بارش نہیں ہو رہی تھی, اور حکومت کی امداد نہیں تھی, تو بہت سارے لوگوں نے خودکشی کی. کیونکہ آپ ایک کسان گھر سے نکلے اور آپ نے صرف اس کو نہیں بنایا, کیونکہ ظاہر زمین تو اتنی ہی ہے نا, تو لوگوں کو دوسری جگہوں پہ بھی پیشوں میں آنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. تھوڑا سا بتائیے آپ کیا کہیں گے اس
میڈم. یعنی چونکہ کسان کے نظریے سے دیکھا جائے, ہم چونکہ کسان پریوار سے ہیں, آج بھی ہمارا گاؤں میں آنا جانا ہے, ہم دیکھتے ہیں 25-30 سال پہلے بھی ہم جب پڑھتے تھے اس سمے بھی گاؤں میں رہتے تھے اور آج بھی ہم گاؤں میں جاتے ہیں. گاؤں کی استھتی میں ایک پیسے کی پریورتن نہیں ہو, کوئی چینج نہیں ہوا, چاہے وہ پڑھائی کا استر ہو یا اس کا جیون استر ہو یا فائنینس کا استر. دیدی سے جس پیمانے پر اس سمے کھیتی کرتا تھا اسی طرح سے آج بھی کھیتی کر رہا ہے. اس کو پیپر میں الیکشن میں تو یہ بہت جو چناؤ ہے, الیکشن ہے یا جو پروپوگنڈا ہے, جو چناوی سبھا ہوتا ہے اس میں بہت بڑے 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 بھاشن دیے جاتے ہیں, ہم کسان کے لیے یہ کر دیے, کسان کے لیے وہ کر دیے, ایسی سویدھا دی گئی ہے, لیکن گراؤنڈ لیول پر جو ہے ایک دم زیرو ہے. کل کسان کو جو ویوستھا 30 سال پہلے تھا آج بھی اسی ودھی سے کر رہا ہے. کسان کی آرتھک استھتی جیسی 30 سال پہلے تھی آج بھی استھتی ہے. پریوار کے 10 بچے ہو گئے 30 سال میں, 3 سے ہمارا پریوار بڑھ گیا, لیکن زمین جو ہے وہ جو تھا وہی رہ گیا ہمارے پریوار کا. ہم 3 بھائی تھے, 3 جگہ میں بٹ گئے, لیکن ہمارا زمین وہی رہ گیا, اپج تو نہیں بڑھی. کھانے کی سمسیا, جب کھانا اپج ہی نہیں ہوگا تو ہم کھائیں گے کیسے, کھائیں گے نہیں تو سوچیں گے کیسے, جب ہمارے پاس کھانے کا نہیں تو پڑھیں گے کیسے. گاؤں کا لوگ پڑھ ہی نہیں رہا ہے. سچائی یہ دیکھا جائے تو گاؤں میں وہی پڑھ رہا ہے جس کے پاس دھن ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, باقی لوگ تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. باقی اسی میں جیون میں روزی روٹی میں لگے ہوں, بیسیکلی وہ تو کیول اپنا جیون بتا رہا ہے. یہی کارن ہے جب آپ سماج میں الیکشن کا جو پروپگنڈا ہے اس میں آپ گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم اتنا کھرب پیسہ کسانوں کے لیے دے دی, لیکن کسان کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں پہنچا. کسان کیا ہے, بینک کے پاس جاتا ہے, بولتا ہے ہم کو قرض دے دو, تو وہ بھی کون جاتا ہے, جو کچھ پڑھا لکھا ہے, جس کے پاس کچھ پونجی ہے. جو نارمل ویکتی ہے, جو سادھارن ویکتی ہے, اوسط سے نیچے ہے, وہ کیا کرتا ہے, گاؤں کے ہی دوسرے جو قرض دار ہے, دوسرے جو کسان ہے جو کچھ پیسہ دے سکتے ہیں اسے ادھار لیتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ ریڑھ پر ریڑھ, بیاج پر بیاج جوڑ دے جاتا ہے, اور اگلا 2-4-5 سال 10 سال میں उस व्यक्ति का खेत हड़प लेता है, उसके पास जमीन ही नहीं बचता है। वो जो रसूलदार व्यक्ति है वो अपना खेत बढ़ाते जाता है और जिसको मरते जाता है। तो स्थिति विपरीत है, जो हमको दिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, वैसी स्थिति नहीं है। पेपर में कुछ है, चुनावी सभा के लिए कुछ है, लेकिन यथार्थ स्थिति में देखा जाए तो गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, जिसके कारण किसान किसान ही रह जाता है। गिने चुने किसान में जिस गांव से हम 30 साल पहले निकले, आज भी उस गांव में 30 साल में बहुत कम ही 2 या 4 लोग हैं जो नौकरी के सामने आए, बाकी सब लोग किसान में ही लगे हुए हैं। जिसके पास 10 बीघा खेत था, 3-4 बच्चे हो गए, उसके भी बच्चे हो गए, तो अल्टीमेटली क्या है, किसी के पास आधा बीघा खेत है, किसी के पास वो भी नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई चोरी में लिप्त है, कोई दूसरे के यहाँ काम कर रहा है, तो जीवन स्तर एकदम घटिया हो गया है। तो जीवन स्तर जब घटिया हो गया तो जीने का जो स्कोप है, जीने की जो लालसा है, वही नहीं। तो इसका परिणाम, दुष्परिणाम आत्महत्या के रूप में, चोरी के रूप में, बहुत सारा जो एग्जाम्पल है उसमें मिलता है।
आप जानते हैं किसी ऐसे शख्स को जी? आपके जानने वाले किसी किसान ने आत्महत्या की?
हाँ हाँ, मेरे इलाका में भी ऐसा केस हुआ है। हम जानते हैं, खुद हम लोगों की स्थिति को जानते हैं। बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन नहीं दे पाया। ठीक है, बैंक का लोन नहीं देने से तो आपका जो पशु है वो उठा के ले जाएगा, घर कुर्की जब्ती कर लेगा, लेकिन जो गांव का देता है, गांव का व्यक्ति, वो तो सब कुछ हड़प लेता है। आपका खाने का जो घर में यदि चावल दाल है, बर्तन है, वो भी उठा के ले जाता है।
साहूकार
आपका बच्चा कैसे खाएगा, अब उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये स्थिति किसान को झेलना पड़ता है।
ऐसे अपनी जान कौन लेता है? जान तो सबको प्यारी होती है, जिंदगी तो सबको अच्छी लगती है।
जान को कौन जीना नहीं चाहता है, अपने से कौन मरना चाहेगा, कोई नहीं मरना चाहता।
बिल्कुल सही,
किसको खुशी नहीं प्यारी है, सब चाहता है कि हम अच्छा से जिए, लेकिन वैसा एनवायरनमेंट हो, व्यवस्था हो, तब तो जिएगा।
हर बुध को प्रोग्राम मेरी कहानी और हर हफ्ते को प्रोग्राम कुछ तो कहिए मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे।
आप ये प्रोग्राम उर्दू सर्विस के फेसबुक पेज पर लाइव भी सुन सकते हैं और इस दौरान अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/voaurdu।
तो सामीन, फेसबुक का पता भी आपने सुन लिया, इस पर आइए और ये प्रोग्राम आप बराए रास्त सुन सकते हैं और अपने मैसेजेस भी पोस्ट कर सकते हैं। कुछ नाम और पढ़ दूँ फेसबुक पर से ही। विकास बेग, मलिक जावेद डार, शकील खान, ताहिर फवाद, शम्स खान मीरानी, इन्होंने सराहा है, वेलकम किया है। और ताहिर फवाद ने पूछा है कि किसकी आवाज़ है, तो पता नहीं आप कौन सी आवाज़ को पूछ रहे हैं। जो कहानी सुना रहे थे वो थे श्री भगवान शर्मा साहब, जो झारखंड इंडिया से ये कहानी सुना रहे थे, और मैं आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़। तो चलिए हम बात करते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं लेकिन उनके अलावा सनाउल्ला जहरी साहब भी हमारे साथ हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी शर्मा जी?
हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है।
बहुत अच्छी आपने कहानी सुनाई और आपके लिए कुछ सवालात भी लोगों ने पूछे हैं। थोड़ा सा लोगों ने मिक्सअप भी किया इस बात को कि जो वीडियो है, शायद आपने वो हमें भेजा है, लेकिन मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि वीडियो शर्मा जी ने नहीं भेजा, कि वीडियो उनकी कहानी से मुताबिकत रखता था इसलिए डाला था। और मैं चाहती थी कि हम इस मसले पर बात करें कि ये किसानों का जो मसला है और एक ऐसे शख्स से जो उस गाँव से बाहर निकला, बहुत आगे बढ़ा, ईमानदारी दयानत की इन्होंने अपनी मिसाल कायम की। तो आपको मुबारकबाद कि एक अच्छी कहानी आपने ये सुनवाई। मुझसे एक लिखा है हमारे फेसबुक पर एक साहब हैं, नाज सरदार बलोच साहब, उन्होंने पोस्ट किया था कि आप बहुत दर्दनाक कहानियां सुनाती हैं लेकिन ये कहानी बहुत दिलचस्प है, जो आपकी यानी कहानी है शर्मा जी की। इन्होंने आपको बहुत मोहब्बत से वेलकम किया है क्योंकि आपकी कहानी का एक तो अंजाम बहुत खुशगवार है। तो आप ये बताइए मुझे कि ज़्यादातर क्या देखा आपने गांव में, जो कहानियाँ, अब शहर में आने के बाद नहीं, जब आप गांव में रहते थे तो कहानियों का अंजाम ज़्यादातर क्या होता था?
पहला बात तो हम ये करेंगे मैडम कि जो भी आपके प्रोग्राम में अभी जुटे हैं सामीन, चाहे वो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से, मेरी कहानी सुनने और पसंद करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पसंद किया। और ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है जिसको हमने अपने जुबान में आपको सुनाया। तो इसलिए इसको कहानी के रूप में ना लिया जाए।
जी जी जी, नहीं 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 शर्मा जी, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये प्रोग्राम है ही सच्ची कहानियों का। हम कहानी कहते हैं मगर हमने ये लोगों को बता रखा है, सबको मालूम है कि जो भी कहानी, इसीलिए हम जब कोई अफसाना लिख भेजता है हमें, तो वो चाहे कितना भी बेहतरीन हो हम नहीं शामिल करते, क्योंकि हम चाहते हैं लोग अपनी ज़िंदगी की बात करें। और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मतलब मैं इन कहानियों करती हूँ जिसमें लोग खड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे, उन्होंने साबित कर दिखाया कि बेइंसाफी के खिलाफ वो जीत सकते हैं। तो जैसे आपकी कहानी थी जी, आगे आप बोलिए।
तो मैडम दो चीज है, एक आप गांव का परिवेश में दो चीज है जो अमीरी और गरीबी, पैसे वाले और बिना पैसे वाले, हर जगह में ये चीज खेमा में बटा हुआ है, बाद में बटा हुआ है, लोग जाति में बटे हुए हैं, ग्रुप में बटे हुए हैं। तो जितने नॉर्मल व्यक्ति है, जो साधारण व्यक्ति है, जीने खाने वाले, जो हैंड टू माउथ जिसे हम कहते हैं, जो दिन भर कमाए और शाम को खाना खाए, तो ऐसे व्यक्ति का अंजाम यही है कि यदि हम दबंग व्यक्ति है गांव का और उसने सोच लिया कि नहीं इसको गिराना है, तो उसका परिणाम यही है कि वो जो धनी व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, जो चाहता है वही होता है, चाहे भले ही आप क्यों नहीं ईमानदार हो, तो उसको समाज से बहिष्कार होगा, उसका इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा, अब कितना भी ईमानदारी से डटे रही है, लेकिन लोग जो समाज है, न्याय उसी के हाथ में है, जो आदमी आपके ऊपर इल्जाम लगाया अब कहाँ निकल के चलिएगा। हर जगह जो टीम बनी है इंक्वायरी के लिए, वो गांव का लोग है, वो दबंगों का है, तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है या समझने में आता है कि कुछ यदि वैसे टीम में लोग हैं जो न्यायपरस्त हैं, न्याय का तजुर्ब देते हैं, तो उस मामला को इस टाइम से निपटाते हैं कि दोनों हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा भी गलती है, जो इल्जाम लगाया है उसको भी बोलता है नहीं नहीं ठीक है ये आदमी बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेटली उसको दोष उसके ऊपर चला ही जाता है, चाहे उसको सजा के रूप में मिले या फिर मान मर्यादा प्रतिष्ठा के रूप में मिले, भुगतना उसको पड़ता है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगता है।
बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें एक बदकिस्मती की बात यह है, जैसे कि आपने गांव की बात की, अब पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे हैं अदालतों में, उसमें एक शिक मौजूद है जिसमें ख़ानदान माफ़ कर सकता है। अगर कोई कातिल है तो अगर ख़ानदान उस कातिल को माफ़ कर दे तो उसको वो छूट जाता है कत्ल करने के बावजूद। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जब गरीब आदमी का कत्ल हो, वो शख्स कोई गरीब शख्स हो, तो उसे धौंस से, धमका के, लालच दे के, बहुत सारे तरीक़ों से उसको निकाल लिया जाता है, उस आदमी को जिसने जुर्म किया होता है और जिसे बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और वो जो ख़ानदान है तबाह हो जाता है, क्योंकि जब उनका सरपरस्त चला गया तो ज़ाहिर है कौन उनको कमा के खिलाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें
बोलिए।
बिल्कुल, तो मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ, और पहले मैं सनाउल्ला साहब को ले लूँ, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी सनाउल्ला साहब, कोहलूस बलोचिस्तान से।
मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, सलाम अल्लाह साहब।
हाँ मैडम आप कैसे, खैरियत से?
जी जी बिल्कुल ठीक। तो
नंबर एक, इनकी कहानी बहुत दिलचस्प थी और अल्लाह ताला इनको मजीद जो है तरक्की अता फरमाए। और नंबर दो, आपने एक सवाल किया था, मैंने कहा कि हम लोग 46 राशन दे चुके हैं लोगों को, अब अल्हम्दुलिल्लाह 64 पे हम लोग पहुँच गए आज।
चलिए बहुत खुशी हुई, और खुदा करे किसी तरह आपका काम चलता रहे। बहुत शुक्रिया सनाउल्ला साहब, जब भी आते हैं अच्छी बातें आप करते हैं। अच्छा, सालार खान ने इस वीडियो के बारे में पूछा था, ये क्या है? तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जयपुर में एक एहतजाज हुआ था इस साल, नहीं गुज़िश्ता साल, और उसमें जो किसान थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वो उस पर एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज का तरीक़ा उन्होंने ये निकाला था कि ज़मीन में गड़ा खोद के ख़ुद को दफन कर लिया था, और कई दिन तक वो एहतजाज करते रहे। असलम हसन अली जुमानी ने पूछा है, कहा है कि जो खलीज है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह अमीर और गरीब के दरमियान, वो बहुत ही बड़ी है, और ये हो रहा है कि गरीब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनको आमतौर से अदालतों में भी इंसाफ कमी मिलता है। इसमें ये भी बात है कि इंसाफ को महंगा इतना कर दिया गया और इतना डिले कर दिया गया, तो जैसे कहते हैं ना कि ताखीर से जो जस्टिस है फिर वो जस्टिस नहीं होती, कि गरीब जो है वो चक्कर भी नहीं काट सकता, नौकरी छोड़ के बार बार आ भी नहीं सकता, जो अमीर हैं उनके तो वकील ही लड़ते रहते हैं उनके मुकदमे दर मुकदमा। تو یہی بات شاہ جی نے لکھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے غریبی تباہ ہیں. عاشق خاص خیری نے بھی مبارکباد دی ہے, سلام کیا ہے آپ کو, اور کشمیر کہانی کے مہمانوں کو خاص طور سے سلام لکھا ہے آپ کو شرما جی. اور توصیف شوقی نے درویش باغ بارہ پٹن بارہمولہ جموں کشمیر سے پوچھا ہے کہ زمین چھیننے کی کیا وجہ تھی, کیا وہاں پر کوئی پروجیکٹ بنایا گیا, اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ دونوں ملکوں میں بہت سے لوگ بھوکے مرتے ہیں, لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر اپنے ہاتھ سے لوگ کچھ کام کریں تو کم از کم وہ بھوکے نہیں مریں. اس کا جواب میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن پہلے میں بتا دوں کہ یہ ایک گھروں کا پروجیکٹ تھا, ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا, جس اسی زمین پر کھیتی ہو رہی تھی, تو ان سے وہ زمین لے کے اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے دے دی گئی. کیونکہ کئی دفعہ دیہاتوں میں آتے ہیں بعض علاقے, اور پھر جب شہر بڑھتے ہیں تو دیہات جو ہیں وہ بھی شہر بن جاتے ہیں, تو پھر ان علاقوں ان زمینوں کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے, اور ان پر ہاؤسنگ پروجیکٹ یا جو بھی چیزیں تعمیر ہوتی ہیں. اب میں یہ کہوں گی, میں بھی اس کا جواب دے سکتی ہوں, لیکن شرما جی میں یہ کہوں گی جب لوگ بھوکے مرتے ہیں, یہ سچ ہے کہ کام کر کے تھوڑا بہت کمایا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی تو ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کما سکیں, خاص طور پہ عورتیں گھروں میں بیٹھنے والی. کئی دفعہ سماج ہی ان پر یہ پابندی لگا دیتا ہے کہ کام نہ کرو باہر جا کے, اور الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ اگر اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں.
دو باتیں اس میں مکھیہ روپ سے ہے, بہت سارا آج بھی پریوار ہے جو گھر کی عورتوں کو باہر کام کرنے سے منع کر دیتا ہے, تو وہ تو باہر میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں.
جی,
ان کا کام نہیں ہے کہ جو مرد باہر میں کما رہے ہیں وہ لائے اور گھر میں بنائے اور وہ پریوار کا بھرن پوشن کرے. لیکن جب آدمی کا اچھا شکتی ہی ختم ہو جائے گا, جب ہمارے پاس کچھ جینے کے لیے امید ہی نہیں رہے گی, لالسا ہی نہیں رہے گا.
جی,
یعنی ہماری کیپیسٹی ہے 10,000 کمانے کا, ہمارے اوپر 50,000 کا قرض ہوگا, تو ہم کو تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ قرض دنوں دن 50,000 سے 60,000 ہو رہا ہے, 60,000 70,000, ہم کہاں سے بھرپائی کریں گے.
بالکل.
اور یہ جو ہمارے آنے والی پیڑھی ہے اس کے اوپر یہ بوجھ بڑھتے جا رہا ہے.
بالکل.
تو یہ تو بہت اس سمے جو کٹھن پرستھتی کٹھن سمسیا جو مسئلہ کریٹ کر دیتا ہے لوگوں کے اوپر, تو وہ اپنے جینا ہم کو کسی طرح چاہیے, یہ تو سوچ ہی نہیں پاتے ہیں. جب آدمی میں سوچنے کی چھمتا رہے تب تو وہ کچھ بھی کما کے کھائے. اور دوسری ہے بات یہ کہ یعنی ہم چاہتے بھی کہ ہم کو کما کے کھانا چاہیے, لیکن جس سے ہم پیسہ لیے ہیں وہ ہم کو جینے دے تب نا, وہ تو لگایا ہے کہ تم تیرا پیسہ دو, تم میرا کل 10 روپیہ تھا, آج وہ جوڑ رہا ہے کہ تمہارے پاس 15 روپیہ ہو گیا, کل 20 روپیہ ہو گیا, اس کا پیسہ دنوں دن بڑھتے جا رہا ہے.
اس میں ایک ذلت بھی ہے, اسی گاؤں میں رہتے ہیں, انہیں دھمکایا جاتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے, تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور ان کے بچوں کو, ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ ہم مری جائیں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, مجھے واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے کہانیاں اچھی سنانے والے جب پروگرام میں آتے ہیں, اور ان میں ایک سماجی شعور بھی ہوتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ شرما جی, مجھے امید ہے کہ آپ اور بھی کہاں, آپ کا کانٹیکٹ ہے, آپ کا ایک لسنرز کلب بھی ہے, کیا نام ہے آپ کے کلب کا؟ تو بہرحال آپ کو فون کر دیا, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کلب کے ممبر سے ہمیں کہانیاں لکھوا کے بھیجیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, نذیر بھنڈر صاحب. جی نذیر صاحب, نذیر صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی نذیر صاحب جلدی سے بولیے گا.
اتنی خوشی ہوئی ہے نا یہ کہانی سن کے شرما جی کی,
بالکل صحیح آپ نے کہا,
بالکل جینون چیز ہے. میں کسان کے رانے سے تعلق رکھتا ہوں.
اچھا,
اور ان کی 100% تمام جتنی بھی باتیں تھیں نا
جی
وہ درست تھی. ایسے موضوعات جو ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرنا آپ کا بہت بڑا فرض ہے, اور بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی بات چیت سن کے.
تو نذیر صاحب آپ اب آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کسان ابھی بھی آپ زمینوں سے کوئی کام ہے آپ کا یا کچھ اور کرتے ہیں آپ؟
جی 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 میرا کھیتی باڑی کام ہے.
کھیتی باڑی کام ہے, اچھا. لیکن آپ جو ہیں آپ کا تجربہ کیا ہے کہ واقعی کسانوں کے ساتھ زیادتیاں خودکشیاں یہ سب
سر چھوٹو رام نے اتنی محنت کی تھی, ان سے پوچھیں ذرا کہ سر چھوٹو رام نے کسان کے لیے کتنی محنت کی تھی.
تو ایک بات سنیے بھنڈر صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت سی کہانیاں یاد ہیں اور آپ ہمیں سنا بھی سکتے ہیں, چاہے اپنی کہانی لکھیں, لیکن پلیز آپ اپنی کہانی لکھیے گا, اور اپنا نمبر آپ انجم صاحب کو لکھوا دیجیے, تو میں ان سے لے لوں گی یہ نمبر, اور میں پھر آپ کو کانٹیکٹ بھی کروں گی, لیکن آپ پہلے مجھے کہانی لکھ کے بھیجیے, ٹھیک ہے؟
جی یہ تو میرے گرائی ہیں اور بہت ان سے محبت اور پیار ہے,
कौन है जी शख्सियत है ये कौन है छोटू साहब?
मैं जरूर
अच्छा ये आपके अंजुम आपके गिराए हैं। अच्छा अच्छा सही सही तो बस अब अंजुम आपको मैं आपके पीछे लगा दूंगी कि आप कहानी भेजें, छोटू राम की कहानी चाहे भेजें, किसी की भेजें, ठीक है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। और हमारे साथ अब कॉलर इस वक्त ले रहे हैं हम कॉलर्स को, लेकिन मोहम्मद इकबाल चौहान साहब की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत कश्मीर से, लीजिए वो कहानी सुनते हैं।
मेरा नाम मोहम्मद इकबाल चौहान है, मैं ईबकोट करना तहसील डिस्ट्रिक्ट कुपवारा रियासत जम्मू व कश्मीर का रहने वाला हूँ। बचपन की बात है, मेरे वालिद साहब को अचानक किसी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अपना इलाका छोड़कर पाकिस्तान जेरे इंतजाम कश्मीर जाना पड़ा। ये 1966 लगभग जुलाई की बात है। उस वक्त मैं माँ की गोद में था, माँ के बकौल 8-9 महीने का। उसके बाद जब वो चले गए, हम अपने घर से थोड़ा दूर, हम उसको टक्की कहते हैं, टक्की में हमारा डेरा था, दखन नाम था उस जगह का। वहां से फिर घर वापस आना पड़ा, अकेले थे, दादाजी बूढ़े थे, मेरे चाचा उस वक्त पटवारी की नौकरी की ट्रेनिंग कर रहे थे, वो इधर श्रीनगर में थे शायद। घर में एक अचानक मुसीबत आन पड़ी, जुदाई का सदमा, माँ बाप बेसहारा हो गए, क्योंकि कमाने वाले मेरे वालिद साहब ही थे। मेरी वालदा साहब ने फिर घर में काम शाम जो माल मवेशी संभालने का था वही करना था, और तो क्या कर सकते थे वो। दादा साहब ने सरबराई की। वालिद साहब के जाने के बाद तमाम जिम्मेदारी चाचा साहब के कंधे पे पड़ी। घर में एक उनको बहन थी, एक भाई था शादी के बगैर, और बूढ़े माँ बाप थी, तो उनकी खिदमत करना। उसके बाद अभी नौकरी भी नहीं थी, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, मजदूरी के बगैर और कुछ काम नहीं कर सकते थे, मजदूरियाँ उस जमाने में नहीं थी। तो वालिद साहब उधर चले गए, जब 2-3 साल या 4 साल इसी तरह रहे अपने नानियाल में। उसके बाद वो फिर कोट एक गाँव है वादी नीलम में, वहाँ चले गए, किसी फर्म में काम शाम भी किया, और तकदीर से वहाँ शादी की मेरी दूसरी माँ जिनका नाम सकीना बेगम है। उनके 6-7 भाई थे, तो वो भी काम शाम करते, हमें उनका कोई खबर नहीं थी। मैं छोटा बच्चा था, जब स्कूल जाने लगा तो चाचा साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुझे स्कूल छोड़ा, मैंने भी आस्ता आस्ता पढ़ना शुरू किया। तमाम अखराजात घर के, पढ़ाई के, जगह जगह पढ़ाने के वो चाचा साहब ही ने अदा किए। इस तरह से वक्त गुजरता रहा, आस्ता 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 मैं 10वीं तक पहुंच गया। 10वीं में कौन पहुंचने के बाद अचानक एक बार ऐसा हुआ कि वालिद साहब का संदेशा आया कि मैं वापस आना चाहता हूं। तो फिर जिस तरह हमने जुदाई के दिन काटे, रोते हुए अपना वक्त गुजारा, यही हाल उनका फिर बाद में हुआ होगा जब मेरी माँ मेरे वालिद साहब सन 1984 में वापस अपने घर तशरीफ लाए। मेरी सौतीली माँ को 6 भाई थे, 2 बहनें थी, अपनी वालदा, उसके वालिद साहब, उस सब को छोड़ के मेरे वालिद साहब के साथ अपने 4 लड़कियों को और 2 भाइयों को लेकर वारदे इस कश्मीर हुए। फिर यहाँ पे वो बाइजत रहने लगे, लेकिन जो मुसीबत हमने पहले देखी वो बाद में हमारी वालदा साहब को देखनी पड़ी। 15-16 साल इसी तरह वो भी याद करती रही अपनी माँ को, अपने भाइयों को। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, जिस तरह हम पहले रोते रहे बाद में वो हमारे पास रोती रही। आज भाई याद आया, आज बाप याद आया। आखिरकार चलते चलते फिर दोबारा एक वक्त ऐसा आया कि जब मुफ्ती साहब की हुकूमत थी इस कश्मीर में, तो यहाँ से रास्ते खुले, तो फिर मौका मिला उनको अपने भाइयों को देखने का। एक बार वो वीजा पे गए, परमिट पे, उनकी दोबारा वहाँ भाइयों से मुलाकात हुई, लेकिन तब तक उनके वालिद साहब गुजर चुके थे, उनकी वालदा साहिबा गुजर चुकी थी, सिर्फ भाइयों से मुलाकात हुई। तो ये सिलसिला कुछ विधाइयों का इसी तरह चलता रहा, और उससे कबल भी हमें ये सिलसिला था। हमारे वालिद साहब की बहन की भी शादी कश्मीर पंचकोट इलाके में हुई थी, वो जुदाई भी दादा साहब को सहनी पड़ी थी, इसलिए मैंने अपनी इस कहानी का नाम मुलाकातें और जुदाई का रखा था। मेरे पास इसकी कापी मौजूद नहीं है, इसलिए कोई बात आगे और कोई पीछे है। इस वक्त फूफी साहिबा जुदाई में गाने गाती रहती थी, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता है। फूफी की लड़की ने शायद गाया था, फूफी भी तो गाती ही रहती थी ना, जुदाई के गाने गाती रहती थी, वो हमारी अपनी जबान में, पहाड़ी जबान में जुदाई के नगमे हमेशा गाती रहती थी, रोती रहती थी। अभी 2-4 दिन पहले मुझे एक फेरे भाई का फोन आया था, रो गया वो, मैं सुना है इस तरह चाचा साहब का एक्सीडेंट हुआ था, सच बताओ वो ठीक है या नहीं है, वो तो अल्लाह के वजह से बच गए थे। उसी रास्ते में मेरे वालिद साहब का भी एक्सीडेंट हुआ, वो बस में फोत हो गए, भाई भी जख्मी हो गया उसी हादसे में, अल्लाह ताला ने बचा लिया। एक दरख्त के साथ गाड़ी टक्कर गई और वहीं अटक गई, अगर वो दरख्त ना होता तो शायद वो भी महफूज ना होता। कि नई वालदा इस वक्त मैं यहाँ श्रीनगर में हूँ, वालदा साहिबा घर में, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। अगर तो जो सोतीली वालदा साहिबा है वो भी घर में, दोनों घर में। मेरी वालदा साहिबा मेरे साथ रह रही है, मैं अलग हूँ दूसरे दो भाइयों से, दूसरे दो भाई हैं वो अपनी वालदा के साथ अलग रह रहे हैं। बहनों की शादी हो चुकी है, वो भी अपने अपने अलग अच्छे फर्स्ट क्लास है, शहरत में आराम में सब ठीक ठाक है। आखिरकार कुछ वक्त के बाद मेरी नौकरी भी लग गई, मैं टीचर अपॉइंट हुआ, उसके बाद टीचर से मास्टर, आज मैं हेडमास्टर प्रमोट हो चुका हूँ। लेकिन इस सब के पीछे जितना भी है वो सिर्फ मेरे चाचा हाजी अब्दुल रशीद चौहान साहब की मेहनत है। उन्हीं ने पढ़ाया, उन्हीं ने मुझे संभाला, और मैं जो स्कूल भी गया सिर्फ उनके डर से गया, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। हमेशा वालद साहब याद आते थे, उनकी विदाई में रोना, बस और कोई काम नहीं था। मुझ में कोई हिम्मत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से जो मेरे चाचा साहब का हाथ था, मुझे जो कुछ भी जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ सिर्फ उनकी वजह से पहुँचा, और उनके डर और खौफ की वजह से स्कूल भी गया। मुझे पढ़ने का भी कोई शौक नहीं था पांचवी के बाद, क्यों पांचवी तक तो मुझे शौक था, लेकिन उसके बाद जब ज्यादा ज्यादा मुझे वो याद सताने लगी या कुछ ऐसा हालात हुए, आज ये इस लड़के के साथ नहीं खेलना, नहीं इसका बाप इधर नहीं है, फिर आस्ता आस्ता मेरा दिल टूट चुका था। ये सब कुछ बस अल्लाह मदद करता है, लेकिन कोई ना कोई बरादरी में जो जानकार हो तो उसे ऐसे बच्चों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि जिनके पास भी अल्लाह ताला ने ताकत दी है पैसे की या अक्ल की या इल्म की, उन्हें चाहिए अपने बरादरी में ऐसे बच्चों को देखना जिनके माँ बाप ना हो, जो मजबूरी में हो, मुश्किल में हो, जिनको मदद की जरूरत हो उनकी मदद की जाए। अब मेरी पोस्टिंग होने वाली है कहीं हाई स्कूल में, 22 तारीख को हमें प्रमोशन होगी और 22 मार्च को, लेकिन अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई।
तो सामिन, ये कहानी थी कश्मीर से जो आपने सुनी, और मोहम्मद इकबाल चौहान सुना रहे थे ये कहानी। हमारे साथ दो इस वक्त कॉलर्स मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल हैं कमालिया से और आबिद हुसैन हैं जामपुर से। जी मोहम्मद इकबाल साहब।
वालेकुम सलाम बाजी।
जी पहले तो रेडियो बंद कर दीजिए अपना, और आबिद हुसैन साहब से भी दरख्वास्त है कि रेडियो बंद कर दें अपना, दोनों आप दोनों रेडियो बंद कीजिए क्योंकि आवाज़ ख़राब आ रही है बहुत। जी इकबाल साहब,
बड़ी अच्छी कहानी सुनी है भाई साहब की, इकबाल साहब की।
जी
बहुत अच्छी कहानी है, प्रोग्राम में सुनता हूँ, गाय बगैर सुनता रहता हूँ। तो मेरा एक मसला था, मैंने कहा इस अपना प्रोग्राम के साथ बड़े मसले हालत है।
क्या मसला है आपका? अच्छा एक बात है इकबाल साहब, एक तो आपकी आवाज़ बहुत ही ख़राब आ रही है और आपके पीछे बहुत शोर है, तो आप ऐसा कीजिए अपनी अपनी कहानी लिख के भेजिए, ये कहानी शर्त होती है लिख के भेजना। आप अपनी कहानी लिखिए, फेसबुक पर भेजिए या आप सुना दीजिए, मैं एक दफ़ा फिर अपना ईमेल एड्रेस बताती हूँ, और ताकि आप कहानी हमें भेज सकें। तो ये पता हमारा ईमेल का पता है उर्दू, यानी उर्दू जैसे लिखते हैं, feedback@voanews.com। ये हमसे पूछी थी अभी थोड़ी देर पहले तौसीफ शौकी ने भी, क्या ईमेल आईडी दोबारा बताने को। इनके अलावा कारी बिलाल, महबूब अली चट्ठा, एम के हुंजई, अली मोहम्मद, मोहम्मद कासिम खान, हबीबुल्ला खान और सईद अहमद साहिबान भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अच्छा आबिद हसन साहब हैं जामपुर से। जी आबिद साहब। आबिद हसन जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब आप भी कहानी सुनाना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपको काफी अच्छे से सुन रहा हूँ, आपको दुआएं देते हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत
बहुत शुक्रिया।
लेकिन हम कहानी हमको आपको भिजवाई थी, आपने रिकॉर्ड की थी हमारी। मैं मजदूर आदमी हूँ, तो पांच मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही मुश्किल में हूँ।
आबिद हसन साहब आपने कब कहानी रिकॉर्ड की थी, कुछ जहन में है आपके? किस महीने में कब की थी?
बिल्कुल बिल्कुल मैडम मुझे याद है, ये 26 अक्टूबर 15 को आपने मेरी कहानी रिकॉर्ड कराई की थी,
यानी सन 2015 में।
जी जी 2015 में।
तो अब तो आपको दोबारा रिकॉर्ड करवानी पड़ेगी अपनी कहानी, ठीक है? तो आप अपनी कहानी दोबारा रिकॉर्ड करवाइए, अंजुम से मैं नंबर ले लूँगी आपका, बल्कि मैं आपको खुद फ़ोन करूँगी, आपके पास कहानी लिखी हुई मौजूद है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी हफ्ते बल्कि आपसे कॉन्टेक्ट करके, आप बेफिक्र रहिए। होता यह है कि जिन कहानियों में कहा जाता है किसी से मदद के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई ढूंढने, जब कोई नहीं मिलता है तो वो कहानी पीछे चली जाती है, और उसी में कई दफ़ा कहानी नशर होने से भी रह जाती है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ज़रूर आपकी कहानी रिकॉर्ड करके और दोबारा से कोशिश करूंगी कि हमें कोई मदद मिल सके। अच्छा, मास्टर औरंगज़ेब की कहानी है, ये बड़ी अच्छा है, रमज़ान का महीना है और थोड़ा सा मुस्कुराने का आपको मौका मिलेगा, तो बजाय इसके कि हम ये, उन्होंने अपने वालिद की कहानी सुनाई है, शिकार की दास्तान है, तो लीजिए मास्टर औरंगज़ेब से कहानी सुनते हैं।
मेरा ताल्लुक जिला मानसेरा के इलाका तनावल के गांव पड़ेना से, मैं एक रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। मेरा नाम औरंगज़ेब तनोली है। मैं अपने वालिद साहब मरहूम की एक सच्ची कहानी लिख कर भेज रहा हूँ। उनका नाम फकीर मामन था, जिनकी वफात 1976 ईस्वी को हुई। वो अपनी जवानी के वक्त बड़े बहादुर और निशानाबाज गिने जाते थे बंदूक के। उनकी बहादुरी के मुख्तलिफ किस्से हैं। उन्होंने अपनी जवानी की उम्र में चंद एक शेर और रीछ उनकी बिल्लों के अंदर जाकर शिकार किए थे। अफसोस की बात है कि उनकी बहादुरी के किस्सों की कोई तारीख नहीं। तारीख न होने की वजह, आज़ादी से पहले हम एक रियासत आम दरबंद के सुकूनती थे। पूरी रियासत में किसी भी स्कूल का नाम और निशान न था। अब जब कि अल्लाह का फजल है कि पूरे इलाका में स्कूल और कॉलेज जगह जगह मौजूद हैं, सब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब ये सबका रियासत PF तवन सूबा खैबर पख्तूनख्वा पर मुश्तमिल है। उस वक्त के रियासती नवाब नवाब खानी जुमान हुआ करते थे, जो कि नवाबजादा सलाहुद्दीन सईद के परदादा थे। नवाब सलाहुद्दीन सईद 1985 के बाद 5 बार हमारे कौमी हलके के अधूरे मेंबर रहे। अधूरापन इसलिए लिखा गया है कि 5वीं बार किसी भी असम्बली ने अपनी मियाद पूरी नहीं की। अब मैं अपने वालद साहब की एक सच्ची कहानी लिखने जा रहा हूँ। कहते हैं कि 1907 में मैं रोजगार के सिलसिले में कोटरी सिंध चला गया, जहाँ पर मेरे इलाके के मुतअद्दिद अफराद रेल की पटरी बिछाने की मजदूरी किया करते थे। चंद रोज आराम करने के बाद मैं भी मजदूरों में शामिल हो गया। उस वक्त कराची से हैदराबाद तक रेलवे लाइन बिछ चुकी थी, ट्रेनों की आमदरफ्त जारी थी। चंद रोज मजदूरी करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी के लिए निकला। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, देखता हूँ कि दो मजदूर ट्रेन के जैक या किसी स्पेयर पार्ट को उठाकर ट्रेन के डब्बा में रख रहे। ज्यादा वजन होने की वजह से दो आदमी को उठाने का ही काम था। मैं हंसी मजाक में उनके करीब पहुंचा, उनसे कहा कि मैं अकेली इस वजन को उठा सकता हूँ। वो चीज मैंने उठाकर नीचे उतारी और फिर अकेले उठाकर ट्रेन के डब्बा में रख दी। मेरी इस हरकत को करीब खड़े एक अंग्रेज साहब देख रहे थे। मेरे करीब आकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे प्रमोशन देकर मजदूरों का मेट बना दिया। अब मजदूरी के चंद दिन भी नहीं गुजरे थे, किस कदर शनाख्त साहब थे अंग्रेज लोग। मुझे इस प्रमोशन पर बड़ी खुशी हुई। मेरे साथी मजदूर इस तरक्की पर हैरान होकर रह गए और मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैं जिस क्वार्टर में साथियों के साथ रिहायश पजीर था, रात होते ही वो सेन के दरवाजों को कूड़े लगाकर पीछे भारी पत्थर भी रख दिया करते थे। मैंने साथियों से मालूम किया कि आप दरवाजा इस कदर मजबूती के साथ क्यों बंद करते हैं। कहने लगे कि रात को जंगल से बुला कर चक्कर लगाती है। उन दिनों वहाँ बड़े घने जंगल हुआ करते थे कोटरी हैदराबाद के दरमियान में। इस खौफ से हम दरवाजों को मजबूती से बंद करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि मैंने चंद एक रीछ और शेर शिकार किए हैं, یہ بلا ان سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگی. پڑوس والے کوارٹر والوں کا بھی یہی طرز عمل تھا. میرے ذہن پر کھٹکا پیدا ہوا کہ کیا انہیں اس بلا کو مارنے کی کوشش کی جائے. آس پاس کے کوارٹر والوں کا یہی بیان تھا کہ بلا رات کو کوارٹر کی گلیوں میں پھر کر ساتھ میں سیمنٹ کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے ہو کر گزر جاتی ہے. ساتھ ہی کوارٹر والوں سے میں نے کہا کہ آج میں ایک دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں, رات وہی بسر کروں گا, میری فکر نہیں کرنی. بندوق تو میرے پاس تھی نہیں. عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے ایک مضبوط ڈنڈا لیا اور سیڑھیوں کے پاس بلا کو مارنے کے لیے بیٹھ گیا. رات کو پچھلے پیر واقعی بلا آ کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی. میں حیران تھا کہ وہ دیکھنے میں کسی جنگلی جانور سے ملتی جلتی نظر نہیں آ رہی تھی. خیر جب وہ میرے پاس سے گزرنے لگی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے سر پر زور سے ڈنڈا دے مارا. سر پر اتنی شدید چوٹ آئی کہ مرتے وقت اس نے منہ سے آواز تک نہیں نکالی. مجھے یقین ہو گیا کہ بلا مر چکی ہے. بلا درمیانے والے قد اور لمبے لمبے بالوں والی تھی. میں نے اسے کھینچ کر قریب کی جھاڑیوں میں پھینک دیا. صبح ہوتے ہی میں اپنے کوارٹر میں آ گیا. دوستوں سے کہا کہ میں نے بلا کو مار دیا ہے, اب باپ بے فکر رہیں. انہیں میرے اس فعل پر یقین نہیں آ رہا تھا. دوستوں کو مری بلا دکھانے کے لیے ساتھ اسی جگہ پر لے گیا. مری بلا کو دیکھ کر سب بڑے خوش ہوئے اور میرے آگ میں نعرہ بازی شروع کر دی. سب رہائشیوں کے ایک جمگٹھا جم ہو گیا. ہم سب وہیں کھڑے تھے کہ انگریز صاحب کے ایک ملازم وہاں پہنچا. وہ بلا کو دیکھ کر ہم سبوں کو برا بالا کہنے لگا اور کہا کہ ظالموں آپ نے کیا کر دیا کہ انگریز صاحب کے کتے کو مار دیا. وہ لمبے بالوں والا کتا تھا جس کو اس وقت تک کسی نے بھی نہیں دیکھا. انگریز باہر سے لے کر آئے تھے اس کو. انگریز صاحب رات کو کتے کو کھول دیا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی اسے باندھ دیا کرتے تھے. اب صاحب کے خوف کے مارے میرے دل میں ڈر پیدا ہوا, کہیں کتے کا مالک صاحب مجھے سزا نہ دے. اسی روز میں وہاں سے گاؤں کے لیے چر پڑا. بعد میں خدا جانے کیا ہوا ہوگا. یہ تھی میرے والد صاحب کی کہانی. ان کی بادری کی چند ایک کہانی اور بھی ہیں, موقع ملا تو ضرور لکھ کر بھیجوں گا.
تو سمین, دلچسپ کہانی تھی, آپ خوش ہوئے ہوں گے. خاص طور پہ ہم نے سوچا کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ایک ہنس بھی لیں, مسکرا بھی لیں. اچھا, عزیز محمد صاحب, جمیل گجر, صوبے دار شریف, فاطمہ جدون, شائستہ قشتون, رئیس محمد خان مکسی, سعید احمد, حبیب اللہ چاند, ولی محمد صاحبان, ان سب نے فیس بک پہ پروگرام سن رہے ہیں, میسیجز کیے ہیں, بہت شکریہ. آپ لوگ اگر ساتھ ساتھ کوئی بات اپنا تبصرہ لکھا کریں تو ہم وہ بھی ضرور بڑے شوق سے سنائیں گے. اس کے علاوہ قاری بلال, محمود علی چٹھا نے پہلے بھیجا تھا. تو اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کروں, بلکہ میں آپ کو خدا حافظ کہہ دیتی ہوں. ہمارے پروڈیوسر, جیسے میں نے آپ کو بتایا, انجم حیر الگل تھے. شہناز عزیز بھی آپ سے اجازت چاہے گی, اور میں چاہتی ہوں کہ آخر میں آپ ایک قوالی سنیں, بہت ہی میری پسندیدہ, اور مجھے پتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کی پسندیدہ قوالی ہے. تو ہم سب کی طرف سے خدا حافظ.
تقدیر مدینہ لکھ دے,
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ماشاء اللہ ہمارا خاندان جو ہے وہ اتروری خاندان ہے، میں بھی پاک کی درگاہ سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور میرے والد غوث عمر ناصر صاحب جو ہیں ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میرے والد غوث عمر ناصر صاحب کے جتنے البم ہیں 120 والیم ہیں، اور یہاں کراچی میں 40-35 قوال ہیں، لیکن اتنا البم کسی قوال کا نہیں ہے جتنا غوث عمر ناصر صاحب کا ہے۔ میرے جو دادا ہیں استاد اللہ ضیاء خاں صاحب، بڑا دادا خاندان میں سے ہماری نسل میں شاہ خاں صاحب، یہ کلاسیکل گاتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور محبوب پاک کی درگاہ سے میرے جو دادا ہیں استاد معین نیازی جن کے نام سے یہ اسٹیٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ محبوب پاک کی درگاہ سے، پھر ہم یہاں اپنے پاکستان میں آئے اپنے والد صاحب کی، ان کی اتنی مطلب عمر نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی میں نے تقریباً 7-8 سال اپنے والد کے ساتھ کنٹینیو پروگرام بھی کرے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد میرے ماموں انیس نظامی ان سے بھی میں نے تعلیم لی۔
خوشی یہ ہے کہ آپ ینگ لوگ ہیں اور آج کل بہت سے بینڈ ہیں، لیکن قوالی جو ہے ایک ایسا فن ہے جو جس کی مثال نہیں ہے۔
ہمارے جو بزرگ ہیں وہ 700 سال سے قوالی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ چلتا آ رہا ہے۔ میں ہارمونیم بھی پلے کرتا ہوں اور طبلہ بھی بجاتا ہوں، کلاسیکل میوزک پہ بھی ہے ماشاءاللہ، اس پہ بھی ہے، لیکن یہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ کچھ جیسے کلاسیکل بھی ہے پاپ بھی ہے۔ ایک ناز شریف ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوال سنا بھائی
جی۔
یا نبی پکارو یا نبی، ہو یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے آقا، آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہے میرے آقا، سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کو تو آتا ہے آقا سب کی لاج نبھانا، آپ کو تو آتا ہے آقا سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا۔
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آوازیں ظاہر ہے آپ دونوں کی بہت اچھی ہیں، موسیقی کے فن سے واقف ہیں، تو آپ لوگ یہ اپنے خاندان کی جو روایت آپ نے رکھی تو یہ بزرگوں کی خاطر کر رہے ہیں یا آپ کو واقعی قوالی کے فن سے خود بھی لگاؤ ہے؟
دیکھیں اصل میں ہمارا پاکستان جو ہے، یہاں جو ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ قوالی کو بہت لائک کرتی ہے، پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نوجوان نسل ہی قوالی سن رہی ہے۔
آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کی کوئی خاص بات جو آپ کو بہت یاد آتی ہو اور آپ کوشش کرتے ہوں کہ آپ بھی ویسا کریں ان کے جیسے بننے کی، تو کچھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیے۔
یہ ان کی خاص ایک بات یہ تھی کہ ماشاء اللہ ان کا جو رجحان تھا اپنی عوام کے لیے، ایک تو ماشاء اللہ بزرگوں کے کلام انہوں نے بہت کرے ہیں، تو ان کو تو مطلب سمجھ لیں ماشاء اللہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان کی سب سے اچھی بات تھی کہ جو بھی وہ کلام کرتے تھے ہر بزرگ کو یاد ضرور رکھتے تھے۔
ایسی عطا ایسا کرم ایسا در نہیں تم سا جہاں میں کوئی بھی، گنجے شکر نہیں بابا گنجے شکر ہوتا۔